एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
करते हैं पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमें मदद कर जैसे हम तेरे वचनों को सुनते हैं, हमारे मनों को खोल दे, तेरा आत्मा दे। विशेषकर मैं मेरे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, उन्हें तू बहुतायत से आशीष दे, तेरे वचन को समझने और तेरे राह में चलने के लिए मदद कर, तू उन्हें तेरा पवित्र आत्मा से चला। पिता परमेश्वर, मुझे तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ्य के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है एक खुला समुदाय। आइए हम परमेश्वर का वचन से पढ़े जो हमें मिलती है याकूब की पत्री उसका 2:8-9 पद में। यहाँ कहता है, यदि तुम सचमुच पवित्र शास्त्र की उस राजकीय व्यवस्था को पूरी करते हो कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख तो अच्छा करते हो, परंतु यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था अपराधी ठहरती है। मसीहों के तौर पर अविश्वासियों और दूसरे धार्मिक समूहों और वर्गों के लोगों के प्रति हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? हमें उन लोगों के प्रति कैसा नजरिया रखना चाहिए जो हमें सबसे ज्यादा अप्रिय लगते हैं? पिछले पाठ में हमने कलीसिया और घर में मसीह प्रेम के महत्व और दोनों की एकता पर इसके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया। इस पाठ में हम सभी लोगों के प्रति, चाहे वे कोई भी हो, मसीह प्रेम का अध्ययन करेंगे। मसीह ने राष्ट्रीयता, पद या पंथ का कोई भेद नहीं माना। मसीह विभाजन के हर दीवार को तोड़ने के लिए आए थे। वह यह दिखाने आए थे कि उनकी दया और प्रेम का उपहार उतना ही असीम है जितना कि हवा, प्रकाश या बारिश की फुहारें जो पृथ्वी को ताजा करती हैं। पूर्वाग्रहों और भेदभावपूर्ण दृष्टिकोणों से मुक्त प्रेमपूर्ण हृदय पाने का एकमात्र मार्ग हमारे भीतर निवास करने वाली पवित्र आत्मा है। वह हमें अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बनाने और उन तक पहुंचने में मसीह के उदाहरण का अनुकरण करने की शक्ति प्रदान करता है। आइए हम यीशु की आत्मा के जैसा चले। यीशु जब पृथ्वी पर थे तो उसका स्वभाव कैसा था, उसे हम पाते हैं मरकुस 10:45 में। मरकुस 10:45 कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दे। परमेश्वर को स्वीकार्य बनाने के लिए हमारे द्वारा किए गए परिश्रम की अवधि मायने नहीं रखती, बल्कि कार्य के प्रति हमारी तत्परता और निष्ठा मायने रखती है। हमारी सभी सेवाओं में स्वयं का पूर्ण समर्पण अपेक्षित है। ईमानदारी और आत्म विस्मृति से किया गया सबसे छोटा कर्तव्य भी स्वार्थ से भरे सबसे बड़े कार्य से अधिक प्रसन्न होता है। हम सुनहरे नियम मती 7:12 में पाते हैं, वह कहता है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यस्तता और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। मानवीय संबंधों के बारे में मसीह के इन सरल किंतु गहन वचनों से बढ़कर कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन इन्हें व्यवहार में लाए बिना समझना कितना आसान है। स्वर्णिम नियम का मानक ईसाई धर्म का सच्चा मानक है, इससे कम कुछ भी धोखा है। हम पढ़े याकूब की पत्री में कि हम बिना पक्षपात के लोगों को व्यवहार करें। सभी लोगों के प्रति परमेश्वर के रवैये के बारे में प्रेरितों के काम 10:1-35 और रोमियो 2:5-11 कहती है। परमेश्वर की दृष्टि में संसार के विभिन्न लोगों के प्रति हमारा रवैया एक समान होना चाहिए। हम सबसे प्रेम करें क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है और वह दुनिया के सभी लोगों से प्रेम करता है। जब लोगों के साथ संबंधों की बात आती है तो पक्षपात शब्द का अर्थ है व्यक्तियों का सम्मान, अर्थात एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ किए जाने वाले व्यवहार में अंतर करना या एक का सम्मान करना और दूसरे का अनादर करना। यही वह मूल्यवान पाठ था जो परमेश्वर ने पत्रस को उस दर्शन के माध्यम से सिखाया जो उसने उसे दिया था। लोगों और उसकी उधार की आवश्यकता के बीच कोई भेद नहीं है। मसीह सभी लोगों के लिए मरा और उसने प्रत्येक के लिए समान बहुमूल्य मूल्य अपने लहू से भुगतान किया। वह किसी को दूसरे से अधिक महत्व नहीं देता। वह सभी से प्रेम करता है, चाहे वे कितने भी नीचे क्यों ना गिरे हों। उसकी निष्पक्ष कृपा के कारण हम सभी उसकी स्वागत करने वाली और मेल मिलाप करने वाली भुजाओं से घिरे रह सकते हैं। मसीह दया और क्षमा का संदेश लेकर इस धरती पर आए। उन्होंने एक ऐसे धर्म की नींव रखी जिसके द्वारा यहूदी और गैर यहूदी, काले और गोरे, स्वतंत्र और बंधुआ एक समान भाईचारे में एक साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें ईश्वर की दृष्टि में समान माना जाता है। उद्धारकर्ता का प्रत्येक मनुष्य के लिए असीम प्रेम है। याकूब पक्षपात के पाप को याकूब 2:1-9 में चित्रित करता है। प्रारंभिक चर्च में शुरू में ज्यादातर विनम्र और आम लोग शामिल होते थे, इसलिए जब धनी लोग आते या शामिल होते तो सदस्यों को उनके साथ अच्छा व्यवहार करना तर्कसंगत लगता होगा। लेकिन प्रारंभिक चर्च उस समय की एकमात्र संस्था भी थी जो पहले से मौजूद सामाजिक भेदभावों को नहीं मानती थी। यहाँ दास और स्वामी एक साथ बैठे देखे जा सकते थे। यसाय दास नेतृत्व भी कर रहा था, लेकिन चूंकि यह परमेश्वर की गोद में है, इसलिए वह चाहता है कि यह उसके परिवार के सदस्यों के बीच रहे। प्यारो, आज हम दो ऐसे मामलों का अध्ययन करेंगे जिनमें यीशु ने उन लोगों के प्रति विशेष सहानुभूति दिखाई जो इब्रानी नहीं थे। सबसे पहले बाइबल से प्रत्येक मामले को पढ़ें, फिर उस मामले से संबंधित पाठ की टिप्पणियां पढ़ें, अंत में प्रत्येक मामले के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें कि की गई सेवा का स्वरूप क्या था, उसका परिणाम क्या हुआ। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें उन लोगों की सेवा करने के बारे में सामान्य रूप से सिखाते हैं जो हमारे विश्वासों और जीवन शैली से सहमत नहीं है। वह हमें सिखाएंगे। पहला है यूहन्ना 4:7-15। यहूदी और सामरी कट्टर दुश्मन थे और जहां तक हो सके एक दूसरे से कोई भी व्यवहार नहीं करते थे। फिर भी यीशु ने कुएं के पास खड़ी उस स्त्री से बात की जो वहां पानी लेने आई थी। उनकी यादगार बातचीत से न केवल उस स्त्री को बल्कि आसपास के शहर के अन्य लोगों को भी मुक्ति मिली। यह हम यूहन्ना 4 में पाते हैं। उद्धारकर्ता अभी भी उसी कार्य को आगे बढ़ा रहा है जैसा उसने समरिया की स्त्री को जीवन का जल प्रदान करते समय किया था। जो लोग स्वयं को उसका अनुयायी कहते हैं, वे बहिष्कृत लोगों का तिरस्कार कर सकते हैं और उनसे दूर रह सकते हैं, लेकिन जन्म या राष्ट्रीयता की कोई भी परिस्थिति, जीवन की कोई भी स्थिति मानव संतानों से उसके प्रेम को दूर नहीं कर सकती। यह शिक्षा हमें यीशु के व्यवहार से जो यूहन्ना 4 में है मिलता है। यदि हम दूसरों से दूसरा व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो हमें सीखना है कि यीशु मसीह सबसे प्रेम के चाहते थे कि सब कोई उधार पाए, सब कोई उसके पास आए। दूसरा मामला हम मरकुस 7:24-30 में पाते हैं। यीशु ने यह चमत्कार एक ही वजह से किया था। हाँ, उसे उस लड़की पर दया आ रही थी जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी, लेकिन उसके मन में एक और मकसद भी था। वह उस पीड़ित स्त्री को राहत पहुंचाना चाहते थे और साथ ही अपने शिष्यों के लाभ के लिए, जब वह उनके बीच नहीं होंगे, एक तिरस्कृत लोगों में से एक के प्रति दया के कार्य का एक उदाहरण छोड़ना चाहते थे। वह उन्हें यहूदी विशिष्टता से बाहर निकालकर अपने लोगों के अलावा दूसरों के लिए काम करने में रुचि लेने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। मत्ती 28:19-20 में हम पाते हैं मसीह की आज्ञा, अपने चेलों को कहा जाओ सारे जगत में और उसका सुसमाचार बतलाओ, उसका सुसमाचार फैलाओ, प्रेम के बातों को बतलाओ। ये सभी जाति के लिए था, सभी लोगों के लिए था, सभी को उन्हें यह सुसमाचार सुनाना था। परमेश्वर ने इज़राइल को खोई हुई दुनिया में अपने राजदूतों के रूप में चुना था। उनके माध्यम से दुनिया भर के लोगों को परमेश्वर की छुटकारे की योजना के बारे में सुनना था। परमेश्वर पर उनकी निर्भरता और उनकी आराधना एक पाठ्य पुस्तक होगी जिससे अन्य राष्ट्र सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता के बारे में सीख सकते थे। लेकिन इज़राइल ने परमेश्वर पर अपनी निर्भरता और अपने उद्देश्य की भावना खो दी। वे स्वयं को एक गर्वित अनैतावाद से देखते थे। परमेश्वर ने उनसे कहा था, उठो प्रकाशमान हो क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है और प्रभु का तेज तुम्हारे ऊपर उदय हुआ है। यह हम पढ़ते हैं यशायाह 60:1 में। लेकिन उन्होंने प्रकाश से अधिक अंधकार को प्रिय जाना, यूहन्ना 3:19 में लिखा है। इसलिए वे परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं रहे क्योंकि उन्होंने सच्ची ज्योति को जो जगत में आने वाले हर एक मनुष्य को प्रकाश देती है, यूहन्ना 1:9 के अनुसार, वे लोग उसे अस्वीकार कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया को वह कार्य करने के लिए बुलाया जिसे इज़राइल ने अस्वीकार कर दिया था। एक नए दृष्टिकोण के साथ यीशु के अनुयायियों को सुसमाचार को पूरी दुनिया में ले जाना था। यह आज भी कलीसिया का कार्य है, हमारा दृष्टिकोण है। मसीह ने अपने शिष्यों को एक ऐसे विश्वास और आराधना की घोषणा करने का आदेश दिया जिसमें जाति या देश का कोई भेद ना हो, एक ऐसा विश्वास जो सभी लोगों, सभी राष्ट्रों, सभी वर्गों के लोगों के लिए अनुकूल हो। हर एक जाति एक ही लहू से बनी है। हम पढ़ते हैं प्रेरितों 17:26 में, पालुस के समय में वर्गों का एक गहरा विभाजन था। चूंकि धनी लोग खुद को श्रेष्ठ मानते थे, इसलिए एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच गहरा अलगाव था। लेकिन इतनी सदियों बाद भी वही समस्या आज भी कायम है। सौभाग्य से परमेश्वर राष्ट्रीयता, नस्ल या जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद स्वीकार नहीं करता। वह समस्त मानव जाति का रचयिता है। सृष्टि के द्वारा सभी मनुष्य एक ही परिवार के हैं और छुटकारे के द्वारा सभी एक हैं। उम्र या पद या राष्ट्रीयता या धार्मिक विशेष अधिकार के भेदभाव के बिना सभी को उसके पास आने और रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जो कोई उस पर विश्वास करता है वह लज्जित ना होगा प्यारो, क्योंकि कोई भेद नहीं है, कहता है रोमियो 10:11-13 में। हम क्या पढ़ते हैं, 13 पद कहता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। और उसी तरह यूहन्ना 3:16 भी कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्यारो यहाँ कहता है, जो कोई उसका नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्यारो मसीहों के तौर पर हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हम सभी से एक जैसा प्रेम करता है। यीशु सबके लिए मरा, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें तुच्छ और दुखी माना जाता है। यह कितना असीम प्रेम है। हमें मसीह के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए बुलाया गया है। प्यारो हम सुनहरे नियम मत्ती 7:12 में सीखते हैं कि हम परमेश्वर को सर्वोच्च प्रेम करें और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें। मानवीय स्वार्थ इतना बड़ा है, संसारिक प्रभाव इतना सूक्ष्म है, और अपनी व्यक्तिगत उदासीनता को क्षमा करने की हमारी प्रवृत्ति इतनी सामान्य है कि केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम मसीह के उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं। नीति के किसी भी प्रश्न ने यीशु के कार्यों को प्रभावित नहीं किया। उन्होंने पड़ोसियों और अजनबियों, मित्रों और शत्रुओं के बीच कोई भेद नहीं किया। उनके हृदय को जो आकर्षित करता था वह जीवन के जल के लिए प्यासी आत्मा थी। उन्होंने सबसे कठोर और सबसे निराशाजनक लोगों में आशा जगाने का प्रयास किया तथा उनके सामने यह आश्वासन रखा कि वे निर्दोष और हानि रहित बन सकते हैं तथा ऐसा चरित्र प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हें परमेश्वर की संतान के स्वरूप में प्रकट करेगा। उसके विश्वास के योग्य बनने के लिए लोग ललाहित थे, नए आवेग जागृत हुए और समाज के इन बहिष्कृत लोगों के लिए एक नए जीवन की संभावना खुल गई। एक कलीसिया और व्यक्तिगत सदस्यों के रूप में हमें पहला सभी राष्ट्रों तक पहुंचने के हमारे वैश्विक मिशन और दूसरा सभी के साथ समान समझ और विचार के साथ व्यवहार करने के मसीह के उदाहरण को ध्यान में रखते हुए आगे चलना चाहिए। प्यारो परमेश्वर आपको आशीष देवे। परमेश्वर आपको बुलाता है कि आप उसके सही सेवक हो के, सही अनुयायी हो के उसके लिए अच्छा ज्योति चमकाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, हम तेरे दया के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमें बुलाया है कि हम तेरे राह में चले, तू हमें बुलाया है कि हम तेरे ज्योति को दूसरों को प्रकाशमान करें। पिता परमेश्वर हमें ऐसा शक्ति दे, हमें ऐसा सामर्थ्य दे, हमें तेरा पवित्र आत्मा अगुवाई दे के नाम से मांगता हूँ।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े, तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।